प्रातः क्लास चल रहा था 15 जनवरी 1966। शनिवार को तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, जब शिवाय नमः कहते हैं तो भक्तों की बुद्धि में यही शिवलिंग आता है। कोई शरीर नहीं आता है, मंदिर में जाते हैं, शिव के दर्शन करते हैं तो क्या समझते हैं किसका दर्शन किया है? कहते हैं शिवलिंग का दर्शन किया। लेकिन वो जो शिवलिंग दिखाते हैं मंदिर में, वो इतना बड़ा है क्या? शिव इतना बड़ा पत्थर का लिंग है क्या? तो उनकी बुद्धि में ये नहीं आता है, ये कोई मुकर्रर मनुष्य का चोला है, प्रतीक है, जिस चोले में, जिस मुकर्रर शरीर में शिव ज्योति बिंदु बाप ने प्रवेश किया। तो शिव ज्योति बिंदु निराकार है, बिंदु का कोई आकार नहीं होता है, लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, तो लिंग दिखाते हैं वो मुकर्रर शरीर की यादगार है। इसलिए बोला कि भक्तों की बुद्धि में कोई शरीर नहीं आता है, और तुम्हारी बुद्धि में है? तुम्हारी बुद्धि में क्या आता है जब शिव बाबा को याद करते हो? पत्थर का लिंग तो नहीं आता है। अगर कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः तो भी ब्रह्मा का सूक्ष्म स्वरूप सामने आ जाता है। और वहां होना चाहिए स्थूल, क्योंकि ब्रह्मा को बदलते हैं, दाढ़ी देते हैं, मूछ देते हैं, क्लीन शेप भी दिखाते हैं, फलाना फलाना करते हैं। तो देखो, उन दोनों को तो क्लीन रखते हैं, ये भी तो आ करके बाप ने बच्चों को समझाया है कि ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा, भक्त लोग जो कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, उसमें ब्रह्मा क्यों लिखते हैं? और उनको प्रजापिता क्यों कहते हैं? शास्त्रों में नाम भी देते हैं प्रजापति ब्रह्मा। तो जरूर प्रजापिता होगा, और प्रजा का पिता होगा मनुष्य सृष्टि की प्रजा है ना, 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि की प्रजा है, उसका पिता कोई तो होगा, तो जरूर यहाँ का ही होगा, इसे दुनिया का ही होगा, सूक्ष्म वतन का नहीं होगा या निराकारी धाम का नहीं होगा, क्योंकि प्रजा तो इस सृष्टि पर है ना, और क्योंकि ये मशहूर है कि देवताओं को तो दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते हैं, उनको तो क्लीन शेव ही दिखाते हैं, क्योंकि देवताएं तो निर्विकारी होते हैं, विकारी मनुष्यों को दाढ़ी मूछ आती है, तो यहाँ इस सृष्टि में तो ब्रह्मा को दिखाते हैं, अक्सर करके दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा को क्यों, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, तो वो ब्रह्मा तो देवता हो गया, उनको फिर दाढ़ी मूछ कहाँ से आ गई, चित्रों में ये दाढ़ी मूछ का चित्रण क्यों किया, चित्र काहे की यादगार है, चरित्र की यादगार है, तो जरूर दाढ़ी मूछ वाले मनुष्यों का विकारी चरित्र किया है, इसलिए बाबा मुरली में बोलते हैं पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, सब विकारी, कन्या माताओं के लिए ऐसे नहीं बोलते हैं कि सब विकारी, देखो शंकर को भी क्लीन शेव और उनको जब बनाते हैं कोई चित्रों में तो कोई कोई चित्रों में दाढ़ी मूछ भी दे देते हैं, किनको, शंकर को, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जरूर पहले शंकर नाम रूप से जो चित्र दिखाते हैं वो भिकारी मनुष्य रहा है जिसे प्रजापिता कहा जाता है, प्रजा भिकारी तो पिता भी भिकारी, फिर वही शंकर पुरुषार्थी रूप में याद में बैठा हुआ दिखाते हैं, तो याद में बैठने का काम संपूर्ण अवस्था में होगा या अपूर्ण अवस्था में होगा, जरूर अपूर्ण है, तो शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं, और याद भी जरूर कोई अपने से ऊंच को करता है, इसलिए शंकर के नाम के साथ क्या जोड़ते हैं, शिव जोड़ते हैं, शिव का नाम पहले क्यों, क्योंकि शिव है ऊंचते ऊंच, वो ऊंचते ऊंच बाप इस मनुष्य सृष्टि के ऊंचते ऊंच में प्रवेश करते हैं, 15 एक 66 की वाणी का चौथा पेज। तो बाप आकर के समझाते हैं और है भी बहुत समझने की बात, क्योंकि ब्रह्मा जब पतित से पावन बनते हैं तो वो तो फरिश्ता बन जाते हैं, फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता ही नहीं। कौन से ब्रह्मा की बात हो रही है? दादा लेखराज ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद इस फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं है, गुलजार दादी में आते नहीं है, तो रिश्ता हुआ ना, तो कौन से ब्रह्मा की बात है? उसी ब्रह्मा की बात है जिसको शास्त्र में कहा है परम ब्रह्म। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, ब्रह्मा सो विष्णु, और विष्णु की एक भुजा है कि चार भुजाएं हैं? भुजा का मतलब मददगार, तो भुजाएं तो जड़ हैं, जड़ भुजाओं में दादा लेकर वाक्य ब्रह्मा भी है। वो स्वयं मनन चिंतन मंथन करने वाली नहीं है, भुजाओं को चलाने वाला कोई होता है या नहीं? कौन और कहां? विष्णु के मस्तक में जो आत्मा है उसको दिखाते हैं कि वो भुजाओं को चलाने वाली, उसी के लिए कहा गया है परम ब्रह्म। वो परम पद है, परम पद पाने से पहले पतित था या पावन था? पतित था, क्योंकि ब्रह्मा जब पतित से पावन बनते हैं तब फरिश्ते बन जाते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण दोनों ये भी देखो बने हैं ना, कौन सी शिक्षा से बने? क्योंकि ये है ही राजयोग, राजा ही प्राप्त कराने वाला योग, महाराजा ही प्राप्त कराने वाला योग। तो ये समझना चाहिए, समझना होता है कि ये जो सतयुग के महाराजा महारानी हैं, ये जरूर जो गीता वाला राजयोग है वो सीखे होंगे, और कब सीखे? सतयुग में सीखे क्या? जरूर सतयुग से पहले के युग में सीखे, जिसे कहते हैं कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, संगम युग। अभी देखो शास्त्रों में उंड बुंड कर दिया है, ये समझते नहीं है कि राजयोग का ज्ञान तो जरूर इस संगम पर मिला होगा। जो ये राजाएं हैं इनको ज्ञान कहां से मिला? डॉक्टरों को ज्ञान मिलता है, इंजीनियर को ज्ञान मिलता है, प्रोफेसर्स को ज्ञान मिलता है, आर्किटेक्चर को ज्ञान मिलता है, इन राजाओं को ज्ञान कहाँ से मिला? किसने दिया? तो मुख्य है ही गीता का ज्ञान। सो गीता का ज्ञान जरूर परमात्मा ने दिया होगा। कैसी आत्मा? परमात्मा। आत्माओं में जो परम है, आत्माओं में मैं परम परम किससे किसको टैली किया? आत्माओं में आत्मा को टैली किया। शिव को टैली किया जा सकता है? है? नहीं। तो जरूर है, शिव ने कोई परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी में प्रवेश किया, प्रवेश करके राजयोग का गीता का ज्ञान सिखाया। जो ये राजाएं हैं इनको ज्ञान कहाँ से मिला? मुख्य है ही गीता का ज्ञान। सो जरूर परमात्मा ने दिया होगा। ये सब विचार सागर मंथन धारण करने की बातें हैं। जो खुद को पक्का कर देवे तो फिर किसको समझा सके? तुमको भी यही समझाना है कि सतयुग की आदि है कलयुग के अंत में। ये लक्ष्मी नारायण तो नहीं है, लक्ष्मी नारायण का राज गायन तो सतयुग में भी है और संगम का भी है, परंतु संगम को भूल गए हैं। इसलिए शास्त्रों में क्या लिखा है, लक्ष्मी नारायण का राज कौन से युग में था? सतयुग में था। तो देखो, कलयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण नहीं होते हैं, सतयुग के आदि में ही जरूर हुए होंगे। ये लक्ष्मी नारायण कलयुग के अंत में कोई राजा रानी नहीं होते हैं, ये एकदम प्रजा का प्रजा पर राज्य हो जाता है और फट से, जैसे रात से दिन, तो ऐसे ये भी तो है ना, रात से दिन कैसे होता है? बस रात पूरी हुई और दिन शुरू हुआ। कब रात पूरी होती है? सूरज डूबता है, तो जब तक डूबता रहता है तो घोर अंधेरा होता रहता है। फिर डूबने से उबरना भी तो शुरू होता है, है? ऊपर आना शुरू होता है या नहीं? तो अभी ये ऐसे ही है कि बरोबर ब्रह्मा की रात पूरी हो जाती है तो दिन होता है। तो ब्रह्मा की रात और दिन, ब्रह्मा की रात में तो यही ब्रह्मा है, साधारण प्रजापिता। असाधारण नहीं। अच्छा, ब्रह्मा दिन में देखते हैं कि बरोबर दिन में तो श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य है, तो जरूर ये ब्रह्मा और सरस्वती ये जरूर लक्ष्मी नारायण पढ़ करके बने होंगे, क्योंकि नाम भी इनका ही गाया जाता है। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है, गॉडेस माने देवी, ज्ञान की देवी। सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है, तो ब्रह्मा को क्या कहेंगे? है ज्ञान का देवता कहेंगे? कहते हैं। तो ब्रह्मा को क्या कहेंगे? ब्रह्मा को कुछ तो कहेंगे ना, बरोबर? क्योंकि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है ना। तो जब ब्रह्मा की बेटी है, गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, तो भला बाप तब कौन होगा? कहाँ बुद्धि ले गए हैं? यज्ञ के आदि में बुद्धि ले गए, जरूर शिव बाप ने जिसमें प्रवेश किया वही आदि ब्रह्मा है, वही परम ब्रह्म है, जिसकी बेटी सरस्वती है। हाँ जी, तो देखो बाप भी ज्ञान ज्ञानेश्वर होगा ना, अभी उनको तो ज्ञान का सागर कहा नहीं जाता है। किनको? ब्रह्मा को। इनको ज्ञान का सागर है? नहीं कहेंगे, वो तो परमपिता परमात्मा है। जरूर तभी ब्रह्मा में प्रवेश करे, नहीं तो ब्रह्मा आवे कहां से? सो भी ब्रह्मा की बेटी भी, और ब्रह्मा की कोई एक बेटी थोड़ी, अथाह बेटी बेटियां हैं। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्राह्मण और ब्राह्मणिया, तो सिर्फ एक बेटी तो नहीं है ना। देखो तुम सभी अभी मास्टर ज्ञान सागर बैठे हुए हो, तो जैसे सरस्वती वैसे तुम, जो धंधा वो करती थी, अभी ऐसे कहेंगे तुम्हारा भी यही धंधा है, और अभी भी धंधा तो उसका वो ही है। अभी माने कभी? 66 की वाणी है ना, 66 की। शरीर छोड़ दिया था किसने? सरस्वती ने। तो अभी भी धंधा उनका, सूक्ष्म बतनवासी होने पर भी, सूक्ष्म शरीर धारण करने पर भी धंधा वो ही है। पढ़ाती रहती है, सो तो तुम जानते हो हैं? कहाँ पढ़ाती रहती है? तुम जानते हो तो बताएंगे हैं? जैसे ब्रह्मा बाबा को छोटा बाबा कहते हैं, सरस्वती को भी छोटी माँ कहते हैं, तो कहाँ पढ़ा रही है? अरे एडवांस में कोई छोटी मम्मी बड़ी मम्मी भी है ना, है? तो छोटी माँ किसमें प्रवेश करेगी? छोटी माँ में प्रवेश करके पढ़ाती रहती है। सरस्वती तो गई, शरीर छोड़ दिया, उस शरीर से तो लक्ष्मी नहीं बनी। तो जो बोला है ये ब्रह्मा सरस्वती ही क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो फिर लक्ष्मी कैसे बनती है? जरूर कोई कन्या में प्रवेश करके लक्ष्मी बनती है। तो कहा अभी भी पढ़ाती रहती है, सो तो तुम जानते हो, क्योंकि ये गुप्त बातें हैं, गुप्त ज्ञान है। और ये भी तो समझ की बात है ना, अभी समझ जब मिली है तो समझते हैं, गाते भी हैं, चित्र भी रखा हुआ है, सरस्वती को बेंजो देते हैं। ये गॉड इज ऑफ नॉलेज है। अरे ये सरस्वती बेटी किसे है? पूछते हैं मुरली में, ब्रह्मा का बाप कौन? तो सरस्वती का भी बाप, ये तो ब्रह्मा की है, तो जरूर तभी बाप को भी ज्ञान होगा। और बाप को ये ज्ञान कहाँ से मिला जो बेटी को दिया? कौन से बाप को? साकार बाप को या निराकार बाप को? साकार बाप को ये ज्ञान कहाँ से मिला जो बेटी को दिया? तो कहा जाता है कि ज्ञान सागर तो शिव बाबा है। कौन है? शिव बाबा या शिव बाप? शिव बाप है ज्ञान का सागर है। ऊंची ऊंची में लहरें मारता है सागर, सागर की गहराई का किसी को पता नहीं चलता है। तीन हिस्सा सागर है और एक हिस्सा पृथ्वी है। जब प्रलय होती है तो पृथ्वी कहाँ समा जाती है? सागर में समा जाती है। और नदियां भी सागर में समा जाती है। तो कहा जाता है ज्ञान का सागर शिव बाबा, जरूर उन्होंने ही ये ज्ञान दिया होगा। कब दिया? ब्रह्मा सरस्वती को कब ज्ञान दिया? यज्ञ के आदि में। उन्होंने कैसे दिया? वो तो निराकार है ज्ञान देने वाला। तो अभी तुम देखते हो ना, बरोबर शिव बाबा इसमें प्रवेश करके ज्ञान देते हैं। कैसे दिया? प्रवेश करके दिया। प्रवेश करके ज्ञान देते हैं माताओं को, और ये भी ज्ञान धारण कर लेते हैं। कौन? दादा लिख रहा। तो ये भी बड़ी ब्रह्मपुत्री नदी है, कौन है? सरस्वती छोटी माँ जब प्रवेश शरीर तो छोड़ गई, फिर वो ब्रह्मपुत्री सागर में कब मिलती है? शरीर छोड़ने के बाद कैसे मिलती है? वो तो ठीक है, ऊंची स्टेज से आती है, गंगा से मिलती है। कब मिलती है? गंगाएं कब निकली? अंत में निकली। तो जरूर अंत में ये ब्रह्मपुत्री नदी भी आकर मिलती है, जो गायन होता है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। तो ये नदी भी कोई कम नहीं है, ये भी नाम। अभी नाम हम लेते नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ है तो उसको समझा करके सिद्ध करते हैं। क्या क्या समझा करके? नाम का अर्थ समझाया जाता है ना। क्या नाम बताया नदी का? ब्रह्मपुत्री, परम ब्रह्म की पुत्री हुई ना। कौन? सरस्वती। भले शरीर छोड़ दिया, आत्मा तो है ना, तो वो आत्मा किस में प्रवेश करके कार्य करती है? है जरूर कोई लक्ष्मी नाम से, लक्ष्मी रूप से संसार में प्रत्यक्ष होने वाली कन्या में प्रवेश करके कार्य करती है। छोटी माँ के रूप में प्रसिद्ध होती है, तब नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्री। तो उसको समझा कर सिद्ध करना पड़ता है। ये शास्त्रों को अभी समझा कर सिद्ध करते थे कि ये रंग है, ये रंग है, इस शास्त्र में जो कुछ है वो सब रंग है। कैसे फिर किस नदियों के लिए भी कह देते हैं ये भी तो रंग है, बाकी नाम वगैरह सभी तो उन्होंने ऐसे ही रखे हुए। बाबा उन नामों को उठा करके समझाते हैं। कि ये ऐसे है, ये अर्थ है, तब नाम पड़ा है ब्रह्मपुत्री। मनुष्य ऐसे कहते हैं ना, परंतु मनुष्य तो अर्थ ही नहीं जानते। तो बाबा भी समझाते हैं ना कि देखो अभी तो भक्ति मार्ग है, सारी दुनिया में ज्ञान का किसी को भी पता नहीं है। वो तो सिर्फ गाते हैं ज्ञान सागर परमात्मा को, कहते हैं परमपिता परमात्मा पतित पावन। तो जरूर जो ज्ञान का सागर होगा वो ही तो पतित पावन होगा ना। कोई दूसरा तो पतित पावन हो ही नहीं सकता। जरूर पतित दुनिया को पावन बनाने वाला वो आत्मा कोई मनुष्य हो सकता है? हैं? मनुष्य नहीं हो सकता, प्रजापिता ब्रह्मा भी नहीं हो सकता, है, शंकर भी नहीं हो सकता, दादा लेखराज ब्रह्मा भी नहीं हो सकता, देवता भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को देवता बनाने वाला तो स्वयं भगवान है, मनुष्यों को देवता कौन बनाता है? भगवान ही बनाता है ज्ञान दे करके। क्योंकि देवताओं को भी कोई देवता बनाते हैं ना, बोलते हैं ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मानुष से देवता की एक रत्न लागी वार, ये किसने कहा? अभी देवताओं को देवता तो नहीं कोई बनाएंगे, क्योंकि वो तो देवता है, और मनुष्य तो मनुष्य है ही, मनुष्य थोड़ो ही कोई बैठ करके किसको देवता बनाएगा है? मनुष्य मनुष्य क्यों है? है, सब मनुष्यों का मन चलायमान है, इसलिए मनुष्य है। तो मनुष्य देवता है नहीं, देवता कैसे बने? मनुष्य देवता को तो नहीं बनाएंगे ना, मनुष्य देवता बनाएंगे क्या? नहीं, देवताओं को तो देखो कि तो रचयिता ही है, बिल्कुल बिल्कुल नई दुनिया, उस नई दुनिया के देवताओं को बाप ने ही बनाया होगा। कैसे बनाया ये देखो, दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं, जबकि हम भी नहीं जानते थे, क्योंकि हम भी तो फिर मनुष्य ठहरे ना, कि देवता हैं। अभी तो देवता नहीं, पहले कभी थे किसी जन्म में, अभी तो हम भी मनुष्य हैं, हम भी भक्ति मार्ग में चले गए थे, क्योंकि ये सभी भक्ति मार्ग में चले गए, नहीं तो बाबा ने समझाया ना कि वो जो सन्यासी हैं उनको भी भक्ति नहीं करनी चाहिए, तो वो जब सन्यास करते हैं तो हम गृहस्थी जो काम करते हैं फिर उनको काम नहीं करना चाहिए, हैं? इसलिए वो ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी जंगल में रहते थे, पंद्रह एक 66 की वाणी का 5वां पेज 3री लाइन। जैसे अभी हम हैं तो शिव से ज्ञान लेते हैं, तो हम कहेंगे हम शिव ज्ञानी हैं, शिव बाबा हमको ज्ञान दे रहे हैं, और हम ज्ञानदाता शिव बाबा को याद कर रहे हैं। अभी वो सन्यासी तो तत्व को, ब्रह्म तत्व तत्व है ना, तत्व तो जड़ होता है, वो तत्व को ही थोड़े ही ज्ञान दे सकता है। शिव बाबा किस में रहते हैं? ब्रह्म महत तत्व में, ऊपर रहते हैं तो भी ब्रह्म महत तत्व, फिर नीचे भी ब्रह्म महत तत्व, तो वो तत्व थोड़े ज्ञान दे सकता है। माना जिसमें प्रवेश करते हैं वो तत्व ही तो है, हाँ, ब्रह्म तत्व तुरिया तत्व है, पांच तत्वों को तुरिया नहीं कहेंगे, तो तत्व हमको ज्ञान नहीं देते, ब्रह्म हमको ज्ञान देते हैं या ब्रह्म या तत्व या श्रीमत देती है। उन तत्वों की मत तो श्रीमत नहीं हो सकती है। किन तत्वों की मत है? अरे ब्रह्मा अनेकों के नाम है ना, तो सारे क्या हो गए? मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम क्या रखना पड़े? ब्रह्मा रखना पड़े। तो जो भी तत्व हैं ब्रह्मा नाम के, वो सब जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे नंबर वार ब्रह्मा हो। तो देखो ये सभी समझने की बातें हैं बच्चों को। क्या समझने की बात हुई? कि जिसमें प्रवेश करते हैं वो ज्ञानी नहीं है, ज्ञान देने वाला नहीं है। कौन है ज्ञान देने वाला? शिव प्रवेश करते हैं, शिव निराकार साकार में प्रवेश करते हैं मुख से ज्ञान सुनाने के लिए। तो वो तो आत्मा है ना, अलग आत्मा है ना, प्रवेश करने वाली अलग, जिसमें प्रवेश किया गया वो अलग। तो ये समझने की बातें हैं बच्चों को, और अंदर में ये बातें चलना चाहिए। जो बातें बाप भी समझाते हैं तो इनका मार्ग ही अपना है ड्रामा प्लान अनुसार, फिर भी कह देंगे कि ड्रामा में इनका है कि घर बार आदि छोड़ना। और भारत को पवित्रता की मदद करना, कि किसका पार्ट है ड्रामा में? सन्यासियों का। तो भगवान भी बताते हैं कि अगर ये पवित्र न बनते, परंतु पवित्र न बनने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि तो ड्रामा विनोद है। क्या ये सन्यासी पवित्र बनते हैं? ये समझाते हैं जरूर पवित्रता चाहिए, क्योंकि भारत जितना पवित्र और कोई भी देश होता ही नहीं है। क्योंकि दूसरे कोई खंड में पवित्रता राज्य तो होता ही नहीं है। भारत ही है जिसमें सतयुग के आदि में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र। अभी वो पवित्र सतयुग के आदि में आए कहां से? तब गाया जाता है ना, संगम युग में मैं आता हूँ, संगम युगे। कौन सा क्षण कहें, कौन सी घड़ी कहें, कौन सा दिन कहें, दिन कहें या मास कहें या वर्ष कहें या पूरा 100 साल कहें? पूरा 100 साल तो युग हो गया। मुरली में तो बोला है कि संगम में पवित्र बनने की पवित्र घड़ी भी है। पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम घड़ी भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है। तो कब है? जबकि गिना जाता है संबत एक एक एक। तब गाया भी जाता है संगम युगे में आता हूँ। तो देखो अभी समझ में आता है, वह आता है मैं कब आता हूँ है? 36 में आता हूँ, 76 में आता हूँ या कब आता हूँ? मैं कहने वाला कौन है? शिव बाप कब आता है? है? हाँ कब? कब? है? 2036 में आएगा, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे संगम युगी, फिर राज्य कहाँ करेंगे? फिर तो सतयुग आ जाएगा, बहुत में बहुत करके संगम युग को 100 साल दो, वो तो युग की बात हो गई। तो देखो अभी समझ में आता है कि हमको तमोपदान से सतोपदान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। ये बाप ने हमको बताया है, नहीं तो मनुष्यों को समझ में नहीं आता है। तो संगम जरूर होना चाहिए। जब पुरुषोत्तम बने तभी तो नाम पड़े पुरुषोत्तम संगम युग। कब बने पुरुषोत्तम? 76 में बने? बने नहीं बने न 36 में बने, क्योंकि पावन राज्य सतयुग में और पतित राज्य कलयुग में, तो दोनों का संगम चाहिए। तो देखो अभी बाप आकर के कहते हैं कि अभी ये संगम है, मैं संगम पर आया हुआ हूँ, और मनुष्य बेचारे घोर अंधेरे में, क्योंकि वो समझते हैं संगम कोई पीछे आएगा, सो भी अच्छा पीछे आएगा, पीछे भी उनको ये मालूम तो नहीं है ना, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा आते हैं और आकर के ज्ञान सुनाते हैं और स्वराज्य स्थापन करते हैं, या आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, ये बात तो कोई को भी मालूम नहीं है और मालूम ही नहीं होना चाहिए। ड्रामा अनुसार कोई को मालूम नहीं है, नहीं मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये मालूम कराना तो बाप का काम है। आकर के ये सब समझाना, वो हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है समझाने वाला। सुप्रीम गुरु भी है, तो देखो ये मालूम करना ये सन्यासियों को कैसे हो सके। तो बाप आकर के सब कुछ समझाए देते हैं कि ये जो कुछ भी तुमने देखा सुना ये सब ड्रामा, ये सब जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी कहते हैं सब भक्ति मार्ग। इस भक्ति मार्ग में ज्ञान तो रिंचक भी नहीं है, इसको बिल्कुल ही भक्ति मार्ग कहेंगे। क्योंकि ध्यान देने वाला एक ही है और भक्ति सिखाने वाले तो अनेक हैं। क्रिश्चियन धर्म में अलग प्रकार की भक्ति, मुसलमानों की अलग प्रकार की तीर्थ यात्रा भक्ति वगैरह, हिंदुओं में अलग अलग भांति भांति की भक्ति। तो फिर ये ज्ञान कहां से आवे? तो देखो, अभी बाप आते हैं तो बहुत ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान का सागर अथा, कितना था, क्या कहते हैं, सारे जंगल की कलम बनाओ, सारे समंदर की स्याही बनाओ तो भी ईश्वर का ज्ञान फूट नहीं सकता। इसे कोई ज्ञान, इसे कोई तो अच्छी तरह से धारण करते हैं, कोई ज्ञान रिंचत भी धारण नहीं करते हैं, धारण नहीं करते हैं तो फिर बोल ही नहीं सकते। धारण करेंगे तभी तो बोलेंगे। तो ये पढ़ाई हो गई, पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट सब एक जैसे तो हो ना सके। बाप बैठ करके समझाते हैं, मैं ज्ञान तो बहुत देता हूं और बहुत अच्छी तरह से समझाता हूं, तो देखो कोई सिर्फ इतना भी नहीं समझा सकते हैं। अच्छा भाई, दो बाप हैं, वो तो परमपिता परमात्मा है, उनसे वर्षा तो मिलना चाहिए, वो बेहद का पिता है ना, उनसे वर्षा मिलना है। तो बेहद के पिता का वर्षा कहाँ मिलेगा? है? वर्षा मिले ही स्वर्ग में, स्वर्ग में मिलेंगे। पीछे स्वर्ग में तो बाप से राजा ही मिलनी चाहिए, नहीं तो देखा जाता है कि स्वर्ग में राजा रानी वजीर ये सभी बहुत ही हैं। पंजाबी साहूकार, यहाँ तो गरीब बहुत हैं, तो जरूर स्वर्ग की नाली जो कोई ने दी होगी ना, जिसने जिसने जितना अच्छा पढ़ा है उसने इतना ऊंच पद पाई लिया, बाकी ने कमती पद पाई लिया। तो ये कोई जानते नहीं है, पर तुमको ये सब समझाया जाता है। तुम अभी ऐसे ही जानते हो कि बरोबर कल पहले भी ये पढ़ाई के ऊपर भी काम चला है, क्योंकि कोई तो राजा रानी बना, कोई वजीर बना, तो तुम अभी देखते हो अच्छी तरह से, हम खुद पढ़ रहे हैं और जितना हम अच्छा पढ़ेंगे, जितना अच्छा औरों को पढ़ाएंगे तो तुम्हारा भी चांस आ जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते करके आ ही जाएगा। चढ़ते चढ़ते आखिरी में तुम्हारा मुख खुलना शुरू हो जाएगा, फिर तुम भी औरों को पढ़ाएंगे, तुम्हारी भी आहिस्ते आहिस्ते चांस आ जाएगी। चढ़ते चढ़ते आखिरी में मुख चलना शुरू होगा, ऐसे कि नहीं नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो महामंत्र है ना। देखो गुरु लोग क्या देते हैं, वो मंत्र कान में भूख देते हैं, और ये मंत्र तो नामी ग्रामी है, परंतु बोलोग तो ऐसे ही मनमना भव मध्याजी भव कह देते हैं, अर्थ तो समझते ही नहीं। अच्छा चलो कोई तो होगा ना वैष्णव जो गुरु लोग हैं, या तो श्री कृष्ण का नाम जाप करते हैं, कई बहुत हैं गीता वाले जो कह देते हैं मनमना भव, भगवान को याद करो तो उनसे वर्षा मिलेगा। अब वो जानते तो कुछ भी नहीं है, पंद्रह एक छियासठ की वाणी का छठा पेज। इस मनमना भव का अर्थ भी नहीं समझाते हैं, संस्कृत में तीन अक्षर जोड़े मत मना मेरे मना मन मन में भव समाजा मेरे मन में समाजा, कहते हैं मन मना भव लेकिन बता ही नहीं सकते कि मेरे मन में समा जाने का क्या मतलब है। बोल देते हैं कि आत्मा सब चुल्लू पानी है और भगवान सागर है, कि चुल्लू पानी सभी सागर में मिल जावेंगे। अरे चुल्लू भी तो छोटा बड़ा हो सकता है। मना मन मना भव का अर्थ क्या हुआ? असली अर्थ ये हुआ कि सबके अंदर जो तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना है, अलग अलग संकल्प चलते हैं, अलग अलग मत मतांतर हैं, वो सब के मत मतांतर एक में मिल जावेंगे, एक के मत में सात की मत मिल जावेगी, सब कहेंगे एक ही सच्चा, हम जो सोचते थे वो सब झूठ, हमने जो भी संकल्प किए वो सब असत्य। What is truth? तो सन्यासी तो खुद ही मनमना भव का अर्थ नहीं जानते, खुद ही नहीं जानते हैं तो दूसरों को क्या बता देंगे। अच्छा ओम शांति।